Om Shanti. As you all know, the humanity is passing through a very critical time, this era of crisis. Which type of crisis are there? Anyone? कौन से crisis आप face कर रहे हैं? No one. There are financial crisis, there are relationship crisis. The most important crisis we are passing through, the humanity is passing through emotional crisis. The humanity is deprived of emotional care and support. So, women are not the spared. Holistic care in antenatal field. So, we all know that the holistic antenatal care is a level of expression in which women are provided psychological, emotional and physical support by the healthcare professionals. So we have a wonderful speaker, Dr. Shubdhani. She will share her experience in the field of holistic antenatal care. And she is a renowned gynecologist from KM Hospital, Mumbai University, associated with the Brahma Kumaris since last 9 years, and a member of medical wing of Brahma Kumaris. I would also invite our distinguished guest from the audience. I would invite Dr. Vijay Bajrang Dalvi. Please, sir, come and take a chair. Then Dr. Shiva Kumar Mohanta, Rourkela. He is superintendent of EESI Hospital, and Dr. Vijram Pallu is a medical superintendent of Rural Hospital, Bidkin. I would also invite Dr. Anju Turiya. She is from Bhagalpur. She was a former SIMS president, works. She is a gynecologist and obstetrician. So now over to Dr. Shubdha. Request Brahma Kumari sisters to honor our valuable guest, Dr. Anju. Is she present here?
खुशहाल माता और बालक का बीच निर्माण गर्भ संस्कार
ओम शांति. सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति. थोड़ा सा मुस्कुराकर ओम शांति. थोड़ा सा दिल से ओम शांति. तो अभी ओम शांति ये जो महामंत्र है ये सभी को तो यहां से पक्का याद हो गया. सभी को पक्का याद हो गया. मुझे याद आता है लास्ट हमारे जो परम आदरणीय दादी जानकी जी थे 104 इयर्स और दादी मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस के लिए यहां ज्ञान सरोवर में आए थे और दादी ने 104 इयर्स में भी ये जो महामंत्र है वो डॉक्टर से पक्का कराया था और दादी इन तीनों बार ओम शांति बोलने का अर्थ भी पक्का कराती थी. तो पहले बार ही जब हम ओम शांति बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है बताइए. उसका मतलब क्या है क्योंकि आज हमारा थर्ड डे है ना. मोस्टली काफी लोग तो चले गए हैं आज. काफी जो बचे हैं वो भी जाएंगे. थोड़े बहुत है वो कल जाएंगे. तो ओम शांति माना पहले बार जब हम याद दिलाते हैं मैं कौन हूँ. मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ. दूसरी बारी ओम शांति बोलते हैं तो क्या याद दिलाते हैं. मैं किसकी संतान हूँ. शांति के सागर पिता परमात्मा निराकार परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ. और तीसरी बारी ओम शांति बोलते हैं तो क्या याद दिलाते हैं कि अब मुझे क्या करना है. ना दुनिया क्या कर रही है, कलीग्स क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे क्या करना है. मुझे शांत रहना है. और जो हर रोज हमारी मुरली होती है तो आज मुरली का जो स्लोगन था वो यही था कि हमें क्या करना है. हमारी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना और जो हमारे वाइब्रेशंस पूरे विश्व के आत्माओं तक पहुंचेंगे तो हम क्या बन जाते हैं. रूहानी सोशल वर्कर. तो आप सभी समझते हैं कि आप सभी यहाँ पे ऐसे ही आए कि कुछ हायर पर्पस के लिए आए हैं। हमने खुद सोचा नहीं था। आप किसके इनविटेशन पर आए यहाँ पे बताइए, किसके इनविटेशन पे आए हैं? शिव बाबा के इनविटेशन पर आए हैं ना। तो जो हाईएस्ट पावर है इस पूरे विश्व की, तो कुछ पर्पस के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियां खुद के लिए बजाएंगे कि आप वो विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं। समझते हैं सभी अपने को भाग्यशाली आत्माएं? तो इसीलिए आपका सिलेक्शन हो गया है। बाकी के दुनिया में इलेक्शन होता है और फिर सिलेक्शन होता है, यहाँ विदाउट इलेक्शन भी क्या हो जाता है? इलेक्शन, सिलेक्शन हो जाता है। और ये सिलेक्शन कौन कर रहा है? स्वयं परमात्मा कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो हम कितने ना विशेष आत्माएं हैं, ये हमें बार बार स्वयं को याद दिलाना है। तो आप सभी का आज के इस सत्र में जो विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। मोस्ट रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन का भी स्वागत है। तो जोरदार तालियां खुद के लिए। और आप सभी का मैं दिल से शुरू में ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि एक बज चुका है और फिर भी आप सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो दो विशेष पर्पज है ना ये जो सेशन आप सुनने का। अनादर 15 मिनट्स में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूंगी। बहुत ज्यादा समय हम स्ट्रेच नहीं करेंगे, लेकिन दो रीजंस के लिए आपको ये सुनना है। काफी लोगों ने सिस्टर शिवानी का सेशन सुना होगा और दीदी ने कहा कि आप जिस भी फैकल्टी से हो, आप जब हॉस्पिटल में आ रहे हो, जा रहे हो, और आप जब भी देखेंगे कोई एक्सपेक्टेड मदर्स को, तो भले आप गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं हो तो भी आपको क्या करना है? दीदी ने क्या वर्ड यूज किया था? देखते हैं आप सभी की कितनी मेमोरी पावर है। दीदी का सेशन तो सभी अटेंड करते हैं। दीदी ने कहा था आप सभी को उनको प्रसाद देना है। क्या प्रसाद देना है? आपको एक लाइन बताना है कि इस 9 मंथ में आपको कुछ भी ना गलत देखना है, ना पढ़ना है, ना गलत सुनना है, ना गलत बोलना है, ना गलत खाना है, ना गलत पीना है। इतना भी आपने उनको प्रसाद दिया तो क्या होगा? माँ कुछ भी गलत यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं डालेगी। और ये इससे क्या क्या उसका प्रभाव होगा, तो गर्भ संस्कार क्या है ये नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम देखेंगे। तो आप उस इंटेंशन से सुनना कि आप सभी को ये प्रसाद है ना, हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर्स हो या आप जहां पे भी प्रैक्टिस करते हो, जब भी आप कोई भी एक्सपेक्टेड मदर्स को देखेंगे तो आपको ये प्रसाद खिलाना है। तो प्रसाद देने के लिए एक लाइन तो है, लेकिन और थोड़ा ज्यादा पता होगा, क्योंकि हो सकता है वो आपको पूछेंगे ज्यादा, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसका रीजन ये है कि जैसे अभी ये प्रोजेक्ट कैसे बना, ये भी मैं आप सभी के साथ 2 मिनट में शेयर करूंगी। तो आप सभी जिस भी फैकल्टी से होंगे है ना, जो भी हम जैसे 11th 12th में क्या पढ़ते थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और फिर क्या होता है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड बायोलॉजी। तो आज अभी 3 दिन में आप सभी ने, हम सभी ने यहाँ पे क्या सीखा? राजयोग मेडिटेशन। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या करेंगे? अप्लाइड राजयोग मेडिटेशन। वो किसके किसके लिए रहेगा? सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ के लिए अप्लाइड राजयोग मेडिटेशन। सेकेंड होगा मेरे फैमिली के लिए अप्लाइड राजयोग मेडिटेशन। थर्ड होगा मेरे प्रोफेशन के राजयोग मेडिटेशन। और फोर्थ होगा सोशल, बिकॉज वी आर इन अ सोसाइटी, तो सोशल एप्लीकेशन ऑफ राजयोग मेडिटेशन। तो हरेक अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग फैकल्टी से होगा। तो हमें लगेगा कि ये सुनने से मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन ये सुनने से मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ये यहाँ बैठकर नेक्स्ट 15 मिनट जब आप सेशन सुनेंगे आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको बताऊं, इस जगह की ब्यूटी ये होती है, यहाँ आप जो भी संकल्प करते हैं वो पूर्ण होते हैं। संकल्प से सिद्धि इस जगह के लिए ये वरदान है, और ये वरदान भगवान का वरदान है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना। आप सभी जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, अभी जो डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का, भाई साहब का आपने सेशन सुना, आपके जैसे मैं 2009 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। ना ही मैंने ब्रह्मा कुमारी सुना था, ना ही मैंने ओम शांति सुना था, और मैं भाई साहब का सेशन सुन रही थी। और जैसे भाई साहब ने पूरा आपको प्रोजेक्ट समझाया, तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या टचिंग हुआ वो सुनते समय, तो इसीलिए मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं फिजिशियन हूँ कि जो मैं ये प्रोजेक्ट सुनूं और फिर मुझे उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन कैसे बाबा टचिंग कराता है, बाबा को जो कार्य करना है, क्योंकि जो भी हम कार्य यहाँ पे कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, ये कार्य निराकार परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो खुद कर रही है। वो किसी को ना किसी को निमित्त बनाती है, चांस देती है। तो हमें क्या बनना है, चांसलर बनना है, हमें उस चांस को नहीं छोड़ना है। तो वहां मैं जब भी भाई साहब को सुन रही थी तो भाई साहब ने जैसे दिखाया, हार्ट दिखाया कैसे ब्लॉकेजेस हो रहे हैं और कैसे वो ब्लॉकेजेस को थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर उस प्रोजेक्ट के द्वारा, उस जो भी डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन, माना स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में डाइट एक्सरसाइज मेडिटेशन, हम उन जो पेशेंट्स हैं जिनको एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस है वो उन्होंने सिखाए। और ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, 1998 में। और ये प्रोजेक्ट कौन कोऑर्डिनेट कर रहे थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम कोई भी बात हवा में एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जब वो डीआरडीओ के डायरेक्टर थे तभी ये प्रोजेक्ट चालू हुआ, ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू और डीआरडीओ के साथ मिलकर। और जैसे भाई साहब ने अभी दिखाया 26 years, 1998 ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। मोर देन 11,000 पेशेंट्स डॉक्यूमेंटेड एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास, जिनके एंजियोप्लास्टी बाईपास हुए होंगे लेकिन यहाँ वो इंटरवेंशन नहीं किया गया था, उसको रिवर्ट किया। लार्जेस्ट रिसर्च इन दी वर्ल्ड जो ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे विश्व को दिया। तो जोरदार तालियां ब्रह्मा कुमारीज के लिए होने चाहिए। और जैसे भाई साहब ने कहा कि यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से तो ना खोल, हजारों से क्यों एंजियोप्लास्टी करो, बाईपास करो। तो ब्लॉकेजेस इस दिल में बाद में आते हैं। ब्लॉकेजेस कहाँ आ रहे हैं, इस दिल में, मन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जब तक ये ब्लॉकेजेस नहीं खोलेंगे तब तक ये ब्लॉकेजेस नहीं खोलेंगे, या खुलेंगे फिर भी वापस आएंगे। तो जैसे उन्होंने दिखाया 22 स्टेंट्स, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इस ब्लॉकेजेस के ऊपर काम नहीं किया। और ये ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कब होगा, जब इसका कनेक्शन उस सुप्रीम पावर के साथ होगा। तो जब मैं ये प्रोजेक्ट सुन रही थी तो मुझे क्या विजन दिखाई दिया, मुझे हार्ट नहीं दिखाई दिया, मुझे वहां पे जो यूट्रस है, गर्भ है, वो दिखाई दिया और उसमें बच्चा दिखाई दिया। और जो वेसल्स हार्ट को जैसे सप्लाई कर रहे हैं और वो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी मदर्स की स्ट्रेस लेवल से वो वेसल्स ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, मदर को भी अफेक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं मैटरनल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक्लाम्सिया, इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और उसके वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन से जो बेबी को आयुजीआर हो रहा है, ओलिगोहाइड्रामनियस हो रहा है, इंट्रा यूट्राइन बेबी सफर हो रहा है, एट दी टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी सफर हो रहा है, आयुजीआर है, ओलिगो है, नेचुरली वी हैव टू गो अहेड विद सीजेरियन। ये बेबीज फिर एनआईसीयू में एडमिट हो रहे हैं, डिपेंड कर रहा है, कभी कभी वेंटिलेटर सपोर्ट लग रहा है, पोस्ट डिलीवरी सफर हो रहा है। इतने ही नहीं, साइंस ने ये बताया फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस। और तभी मुझे बाबा ने दिखाया कि आपको ये रेडीमेड प्रोजेक्ट थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर को क्या करना है, थ्री डायमेंशनल एंटीनेटल केयर, बाकी कुछ करना नहीं था। रेडीमेड प्रोजेक्ट बना हुआ मिला। और जो जो सेशंस अभी तक हमने सुने कि कैसे वो जो आत्मा का है ना, जैसे आज सूरज भाई का आपने सेशन सुना, सबकॉन्शियस लेवल में जाकर हम लोग उसके चेंजेस कर सकते हैं, उनके थिंकिंग प्रोसेस में, उनके संस्कारों में परिवर्तन लेकर आते हैं। तो मुझे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड किया। तो क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चे कैसे होंगे, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड होंगे। सिंपल दो शब्द में यदि बताना है तो हमारे बच्चे, हर कोई चाहता है मेरा बेबी हेल्दी और हैप्पी हो, उसके लिए क्या करना होगा, मदर को हेल्दी और हैप्पी बनाना होगा। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट बना, 2009 में बना। और उसके साथ दीदी का, आदरणीय शिवानी दीदी का हमेशा इसके लिए सपोर्ट रहा। दीदी के साथ हमने ये प्रोजेक्ट जो है अक्रॉस इंडिया इसको लॉन्च किया था। स्वामी भाई का इस बार सेशन नहीं था, ही इज ऑल्सो वेरी गुड स्पीकर, जिन्होंने इसमें पीएचडी भी की है। और ये प्रोजेक्ट फिर G20 तक गया, G20 में ये प्रेजेंट हो गया। आप देख रहे हैं हमारे जो मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो गवर्नर ऑफ झारखंड थे तभी उन्होंने 2018 में इस प्रोजेक्ट को ब्लेस किया था। उसके बाद आप देख रहे हैं जेपी नड्डा जी, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, हमारे आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक जी, तो ये काफी सारे हमारे भारती पवार जो हमारे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे। तो ये प्रोजेक्ट उस लेवल तक गया। कहां से चालू हुआ, माउंट आबू से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और वो प्रोजेक्ट G20 तक गया। आप ये जो देख रहे हैं ये मेरे हॉस्पिटल का फोटो है, मेरा आया वो 40-bedded हॉस्पिटल इन न्यू पनवेल। आप जो भी बॉम्बे या पूना नियर बाय प्लेसेस से है तो आप विजिट कर सकते हैं। तो विद इन यहां से जाने के बाद 6 महीने के अंदर वहां पे गीता पाठशाला शुरू हुई, जो बाबा का सेंटर शुरू हुआ, वहां मुरली क्लास शुरू हुआ। मैं रोज खुद मुरली क्लास लेती हूँ। तो आप ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 8200 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड फ्लोर पूरा मेडिटेशन रूम में कन्वर्ट किया गया है और वहां पे हम एक्सपेक्टेंट मदर्स, फैमिली मेंबर्स, आशा आंगनवाड़ी सेविका, नर्सेस, उन सभी को ये जो प्रोजेक्ट है वो बाकी भी काफी सारे सभी के साथ क्यों शेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको भी जाकर ऐसे कुछ करना है और उसके लिए संकल्प यहां से करना है। 2009 में मैंने जो बीज डाला तो आज ये प्रोजेक्ट वहां तक पहुंचा। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और काफी रेस वाले इन लोगों ने घर बार छोड़ा है तो ये इनको क्या पता, लेकिन मैं तो घर में रहती हूँ, मेरा 40-bedded हॉस्पिटल है, आई हैव 3 children। मेरी बेटी जो है बड़ी बेटी, आप समझ सकते हैं कि 2009 में आज वो MBBS उसने कंप्लीट किया, तब वो कितनी छोटी होगी, तब वो 4th class में थी। आई हैव अ ट्वीन सन तो वो तभी जस्ट 5 years फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे। तो बेटी ने MBBS कंप्लीट किया, PG नीट का रिजल्ट अभी आउट हो गया, बहुत अच्छा रैंक आया उसका, ऑल इंडिया रैंक 6000 है, महाराष्ट्र रैंक 600 आ जाएगा, तो उसको PG जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में गायनेक महाराष्ट्र में मिल जाएगा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो आज मेरे साथ यहाँ है, सेजल उबीरा। तो हमें लगता है कि क्या फैमिली के साथ हम ये कर सकते हैं। तो सेजल आज यहाँ है क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से उसको जूनियर रेसिडेंसी ज्वाइन करेगी, तो उसके पहले उसको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। और सभी को पता है अभी रेसिडेंसी में क्या क्या होता रहता है, तो उसके पहले उसको बाबा को समझना है क्योंकि बाबा को उसको साथ में रखना होगा। तो हमें फैमिली में रहते हुए तो अप्लाइड पर्सनल लाइफ के लिए राजयोग मेडिटेशन, अप्लाइड फैमिली लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल के लिए आपने देखा ये प्रोजेक्ट बना, और फिर सोसाइटी में इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे G20 तक ये प्रोजेक्ट गया। और काफी जब मैं आज यहाँ आई हूँ तब कल परसों भी एक अवार्ड से मुझे वहां नवाजा गया। तो मेरी मम्मा 78 ईयर्स की है, उसके अनी जॉइंट में पेन था, फिर भी वो वहां जाकर उसने अवार्ड रिसीव किया। मतलब बाबा आपको कहां से कहां तक पहुंचाता है। तो ये सारे मिराकल्स एक बार अपने बाबा को समझ लिया और दिल से सिर्फ कहना है मेरा बाबा, तो बाबा बैठा हुआ है, सब कुछ बाबा कर लेता है। फिर ये प्रोजेक्ट सिस्टर शिवानी ने, हमारी जो फॉक्सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस इट हैज अ साइंटिफिक बेसिस। तो ये प्रोजेक्ट वहां पे फॉक्सी में गायनेकोलॉजिस्ट के साथ लॉन्च हुआ। काफी सारे हमारे जैसे यहाँ सेंटर है, हमारा दिल्ली में ORC रिट्रीट सेंटर है, वहां पे भी डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग रखा गया। अक्रॉस इंडिया जो भी हमारे रिट्रीट सेंटर्स है, तो हम एक्सपेक्टेड मदर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए ये प्रोग्राम करते रहते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे जो IMA के प्रेसिडेंट आए थे, आप देख रहे सुधा मूर्ति जी इस एक प्रोग्राम में, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को समझ लिया था, उनके डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी, तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट के बुक्स और जो हमने बनाया है वो लेकर गए थे। तो ये काफी सारी इसकी जर्नी है, क्योंकि आई एम जस्ट शेयरिंग दी एक्सपीरियंस कि क्या क्या मैंने अभी तक किया। फिर कोविड आया, तो कोविड में हम लोग नेचुरली फिर हम लोगों को ऑनलाइन इसके प्रोग्राम चालू करने पड़े। तो इन 2 ईयर्स ऑनलाइन 50,000 इसके सब्सक्राइबर्स हो गए। तो इतना सारा डेली हम लोग उनके लिए प्रोजेक्ट करते रहते थे। तो क्या हम इसमें 3-dimensional क्या समझाते हैं, वो मैं नेक्स्ट 5 मिनट में समझा दूंगी। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, क्या किया इस रिसर्च में, कुछ साइंटिस्ट बॉम्बे में बैठे थे, कुछ साइंटिस्ट फ्रांस में बैठे थे। अभी इस रिसर्च में क्या करना था कि जो बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट है उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। और जो इनकी सोच चल रही थी वो EEG के द्वारा रिकॉर्ड हो रही थी, मॉनिटर पे ग्राफ दिखाई दे रहा था। और फिर उन्होंने क्या देखा, जो ग्राफ बॉम्बे में मॉनिटर पे दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। और तभी हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने कहा दैट मीन्स ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट, माइंड टू माइंड कनेक्शन एग्जिस्ट। जो आप यहाँ बैठकर सोच रहे हो वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में। तो जो मम्मा यहाँ बैठकर सोचेगी वो यहाँ तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आप बताइए। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगी, लेकिन वो सासू माँ के लिए क्या सोच रही है, जेठानी के लिए क्या सोच रही है, हमारे वर्किंग वुमन्स है तो वो सुपीरियर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो वो जो कुछ यहाँ चलेगा, यदि वो छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, दुखी हो रही है, बातों को पकड़ के रख रही है, तो ये सारा कहाँ जाने वाला है, इस माइंड से वहां जाने वाला है। और वहां पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, वहां एक मन का निर्माण हो रहा है, और उस मन का असर किसके ऊपर हो रहा है, उस मन से उस बॉडी का निर्माण हो रहा है, और उस बॉडी से ही वो पूरा लाइफ रहने वाला है। और इसीलिए मदर्स को ये सारा समझाना बहुत जरूरी है, और ये कुछ भी नया नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में पहले से था। अभिमन्यु की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, अष्टावक्र की स्टोरी में बताऊंगी, है ना। क्या चाहती थी माँ सुजाता, कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो अपने फादर्स के क्लासेस में भी जाती थी, हस्बैंड के भी क्लासेस में जाती थी। हस्बैंड जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, कभी कभी क्या होता था कुछ गलत बोलते थे, और जो छोटू अष्टावक्र जो गर्भ में था वो इंटेलिजेंट था, तो वो कैच करता था और वो ऐसे हुंकार देता था, ना आपने गलत बोला। और पापा क्या करते थे, पापा ये नहीं देखते थे कि ये मेरा बच्चा है, और वो वहां से ही श्राप देते थे, और ऐसे कहते हैं 8 times ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे हुआ, और उसके वजह से कि वो फिजिकल बॉडी में भी उसके कर्वेचर्स आ गए। हमें एज अ साइंटिफिक पर्सन पता है कि ये हाई लेवल सीपी है, तो अभी उसने जो इंटेलिजेंट क्लासेस सुने थे तो बहुत इंटेलिजेंट तो हुआ। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ माँ का असर नहीं होता है, पापा का, घर के जो भी फैमिली मेंबर्स है, तो ये सारे फैमिली मेंबर्स, जब एक्सपेक्टेड मदर्स, तो सभी को बताना बहुत जरूरी है, सिर्फ माँ को नहीं, उसको ये भी बताओ प्रसाद देते समय कि आप भी अच्छा अच्छा सोचना, और आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी अच्छा सोचना है, पढ़ना है, देखना है, सुनना है, क्योंकि उसका असर बेबी के ऊपर होता है। तीसरा, जो प्रहलाद के केस में, तो हमने क्या देखा, सेकंड केस में एनवायरमेंटल असर हो रहा है, तीसरे केस में क्या है, प्रहलाद किसका बच्चा था, हिरण्यकश्यपु, तो जेनेटिक्स जीन्स क्या है, ऑल निगेटिव। लेकिन यदि माँ मेडिटेट करती है, डाइट, एक्सरसाइज, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना इपीजेनेटिक्स, डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई साहब ने भी बताया, मोहित भैया ने भी बताया, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो इपीजेनेटिक्स, माँ का डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, थॉट पैटर्न्स क्या है, मेडिटेट करती है, तो उससे क्या होगा, हमारे सिर्फ हैप्पी हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे, हमारे हेल्दी हैप्पी जीन्स ओपन अप हो जाते हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी निगेटिव जीन्स भी है इपीजेनेटिक्स, उसका जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव कुछ भी होने, नहीं तो काफी बार हम क्या कहते हैं कि घर में डायबिटीज है, घर वालों में, हमारे खानदान में हार्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बून है, यदि हमने माताओं को ये सिखाया तो जेनेटिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। लेकिन माताएं मोबाइल के साथ रहती है, इसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो हम माताओं को क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के हम यहाँ पे प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसे चार्ट खुद का बनाने के लिए बोलते हैं। वो कभी देखना है सबकॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है, 2 बार आज आपने रिपीट सुना है ना, डॉक्टर सचिन ने भी बताया, रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते और जब मेडिटेट करते हैं, तो 3 बार माँ को ये देखना है और क्या विजुलाइज करना है कि माई बेबी इज एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, एज स्माइलिंग एज श्री कृष्णा, एज पावरफुल एज माँ दुर्गा, एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इससे क्या होगा, माँ के भी संस्कारों में परिवर्तन आएगा और साथ साथ बेबी के भी संस्कार, है ना। संस्कारों के हमने 5 फोल्डर देखे, लेकिन जो बेबी का ओरिजिनल फोल्डर है, जब माँ यहाँ मेडिटेट करेगी तो ये सबकॉन्शियस माइंड का असर, जो आने वाला बेबी है, भले वो कौन से भी 5 बर्थ से, 1 बर्थ नहीं, कितने सारे बर्थ से वो संस्कार लेकर आया है, लेकिन हमारे पास ये पावरफुल टूल है कि यदि हम माताओं को ये सिखाएंगे तो वो बेबी का भी ओरिजिनल फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसमें वो 7 वैल्यूज है। तो इसीलिए हमें चित्र से चरित्र बनता है, स्मृति से स्थिति बनती है। अभी क्या हो रहा है, पहले जमाने में क्या बोलते थे हम कि हेल्थ गया मना, पैसा गया कुछ नहीं गया, हेल्थ गया थोड़ा गया, चरित्र गया बहुत कुछ गया। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी क्या बोलते हम, पैसा गया सब कुछ गया, हेल्थ गया थोड़ा गया, चरित्र गया कुछ नहीं गया। और इसीलिए आज हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ बनाए, लेकिन आज उसमें वैल्यूज नहीं है। और यही सारा कुछ लास्ट 15 डेज में हम अक्रॉस कंट्री देख रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस यही होना चाहिए कि जो आने वाले बच्चे हैं उनमें वैल्यूज होने चाहिए, और इसीलिए ये सारा कुछ उनको समझाना बहुत बहुत जरूरी है। और कब समझाएंगे, 1000 डेज कभी, कैसे आते हैं, इंट्रा यूटराइन पीरियड 9 मंथ्स, जो 270 डेज पोस्ट डिलीवरी जो है वो टू इयर्स 365 प्लस 365। ये सारा जो भी सेशंस है ना, आप क्या करना, YouTube पे मेडिकल विंग की वेबसाइट, YouTube पे चैनल है हमारा मेडिकल विंग, उसमें 50th आप माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस डालेंगे तो सारे आपको सेशंस मिल जाएंगे, तो उसमें आप ये जरूर देखना। तो इसीलिए स्ट्रेस से देखो, मैटरनल प्रॉब्लम्स, फीटल प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीजेस, तो हमें क्या करना है कि ये सारा प्रिवेंट करने के लिए मदर्स को ये थ्री डायमेंशनल एंटीनेटल केयर समझाना है। इससे एक्सरसाइज से डिलीवरी का, नॉर्मल डिलीवरी का रेट भी बढ़ेगा। तो हमने इसका एक करिकुलम बनाया है, इट्स अ वन मंथ करिकुलम, मदर्स के लिए सुपर मॉम बेबी जर्नल बनाया है, इट्स अ एक्टिविटी बेस्ड जर्नल, आप इस जर्नल को देख सकते हैं, काफी सारे बुक्स हमने लिखे हैं। और मैं आपको कुछ नंबर नोट डाउन करवाऊंगी क्योंकि अभी और एक 5 मिनट में मुझे वाइंड अप भी करना होगा, तो इतना सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप डिवाइन गर्भ संस्कार, डॉक्टर शुभदा नील गर्भ संस्कार इनफर्टिलिटी चैनल पे चले जाएंगे तो आपको काफी सारे सेशंस मिलेंगे, क्योंकि 30 डेज के लिए 30 सेशंस है, 15-20 मिनट्स में मैं पूरा 30 डेज का तो कवर नहीं कर सकती हूँ। तो हमने काफी सारे इसके लिए कमेंट्रीज बनाए हुए हैं, इसके वीडियोस बनाए हुए हैं जो फ्री डाउनलोड है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सभी को भेज सकते हैं। तो इस आप नंबर नोट डाउन करना 9820616 509 और एक नंबर नोट डाउन करना 9820676002। तो आप फिर बाद में डिटेल्स पूछ सकते हैं, या फिर शाम तक भी मैं हूँ यहाँ पे तो बाहर भी हम पोस्ट लंच मिल सकते हैं, या आप 4 बजे के पहले मैं आ जाऊंगी तो तभी भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेबी के ऑर्गन्स इंट्रायूटराइन पीरियड में ही डेवलप हो रहे हैं। बेबी क्या देख रहा है, सुन रहा है, जो मदर देख रही है, सुन रही है, खा रही है, पी रही है, और इसीलिए माँ को कुछ भी गलत ना देखना है, पढ़ना है ना सुनना है, तो क्या करना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, पढ़ना है, तो क्या क्या करें, इसके लिए ये पूरा जर्नल बनाया हुआ है। तो इस थ्री डायमेंशनल एंटीनेटल केयर, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या क्या उसको डाइट लेना है, मसारा इमाटो का एग्जांपल, इमोशनल डाइट क्या होना चाहिए, ये आप सभी सेशंस आप यूट्यूब पे देख लेना, क्या इंक्रीज करना है, क्या रिड्यूस करना है, नॉनवेज क्यों अवॉइड करना है, क्या क्या चार्ट हम उनको देते हैं, फिर हम चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए उन्हें एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल लेबर का हमने उनके लिए कमेंट्री बनाया हुआ है, वो वीडियो देखना है, क्या एक्सरसाइज करने हैं, म्यूजिकल योगा सिखाया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी का पूरा प्रोसेस उनको समझाया जाता है, ये उसको बार बार विजुलाइज करना है, बिकॉज हमें पता है एज यू थिंक यू बिकम, तो जैसा हम सोचेंगे वैसा होता है। तो यदि ये माताएं सोचेंगी कि मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसके लिए एक्सरसाइज करेगी, मेडिटेट करेगी, माइंड को वो पावरफुल बनाएगी, तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है, और हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है, तो वो क्या सोचती है, मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में हो रहा है, तो इट्स 1+1 फ्री। और कितने सारे आप एग्जांपल आप यूट्यूब पे एक्सपीरियंस शेयरिंग में चले जाइए, आपको पता चलेगा। तभी सिर्फ 2-3 मिनट मेडिटेशन का क्या रोल है, राजयोग मेडिटेशन, अप्लाइड राजयोग मेडिटेशन गर्भ संस्कार में क्या रोल प्ले करता है, और ये वैसे हम सभी के जीवन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम मेडिटेट करते हैं 4 जगह उसका इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हमारा जो मन है, माइंड है, वो पावरफुल, पीसफुल, हैप्पी बनता है, और नेचुरली जो माइंड हैप्पी है, पावरफुल है, पीसफुल है, वो क्या करेगा, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करेगा, हेल्दी हैप्पी जीन्स एक्टिवेट होंगे, ओपन अप होंगे, हमारी इम्यून पावर परफेक्ट बनती है, तो हमारी बॉडी भी क्या बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो हमारे बॉडी में जो भी आज हम देख रहे हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, डिप्रेशन है, कैंसर है, जैसे भाई साहब हार्ट अटैक का शेयर कर रहे थे, तो सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, जो भी प्रॉब्लम, 85-90% डिसीजेस, दे आर साइकोसोमैटिक, दे ओरिजिनेट इन साइकी। जब तक हम साइकी को ठीक नहीं कर रहे तब तक ये बीमारियां ठीक नहीं होंगी। इसीलिए हम जिस भी बैकग्राउंड से, जिस भी फैकल्टी से हम आए हैं, हमें राजयोग मेडिटेशन, थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर को हमारे पेशेंट्स को बताना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम खुश रहेंगे तो नेचुरली क्या होगा, हम लोगों से खुशी से मिलेंगे, करेंगे तो हार्मनी इन रिलेशनशिप होती है, और फोर्थ इम्पैक्ट होता है कि हमारे घर का वातावरण जो है वो शांति खुशी प्यार का बन जाता है। और एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए जब वो खुश रहती है, शांत रहती है, तो इट इज लाइक गर्भ महल का निर्माण कर रहे। कलयुग में क्या होता है, इट्स अ गर्भ जेल। मम्मा छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, गुस्सा कर रही है, तो क्या होता है, बेबी को भी अंदर लगता है अरे मैं कहां जेल में फंस गया हूं। और जब मम्मा खुश रहती है, बहुत प्यार से रहती है, तो उसको लगता है वाओ। तो जैसे गर्भ महल, तो हमें क्या शिफ्ट करना है, सतयुग में क्या होता है, गर्भ महल होता है, तो हमें गर्भ जेल से गर्भ महल का निर्माण करना है। जब माँ खुश रहेगी, शांति से प्यार से भरपूर रहेगी, तो आने वाले बच्चे कैसे होंगे, श्री राधे श्री कृष्ण के जैसे बच्चे होंगे। और नेचुरली जब जिस धरा पर श्री कृष्ण और श्री राधे आते हैं, उस धरा पर कब होता है ये, जब वो सतयुग का सतयुग शुरू हो जाता है, और तभी क्या बन जाता है, भारत फिर से विश्व गुरु बन जाता है। तो जब आप माताओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, आप सभी विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, क्योंकि आप भारत को फिर से विश्व गुरु बना रहे हैं, फिर से सतयुग को हम लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना बहुत जरूरी है। फिर एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताएंगे तो इसका साइंटिफिक, क्योंकि हमारा साइंटिफिक माइंड होता है, तो हम पूछते हैं क्या इसका रिसर्च हुआ, क्या कुछ हमारे पास डेटा है क्या, तो काफी सारा रिसर्च हुआ है। आप रिसर्च के पेपर्स भी हमने जो हमारा divinegarbhasanskar.in वेबसाइट है उसके ऊपर डाला है, आप जरूर देखना। इसमें काफी लोगों ने PhD किया है, वो भी हमने डाला हुआ है। तो मेडिटेशन से क्या होगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, निगेटिव हार्मोन्स की वजह से, निगेटिव सोच से निगेटिव हार्मोन्स हो रहे हैं रिलीज, निगेटिव जीन्स हमारे ओपन अप हो रहे हैं। तो मेडिटेशन से क्या होगा, पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, हेल्दी जीन्स ओपन अप होंगे। तो ये लास्ट स्लाइड जो मैं अभी बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वैल्यूज। सभी को आत्मा के 7 वैल्यूज याद है, क्योंकि अभी आज हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें ये सारा पूरा रिवाइज करना है, रिकैप करना है, और फिर कल से हमें अप्लाई करना है। तो मैं आपको न्यूमोनिक्स दूंगी। न्यूमोनिक्स क्या है, KP Prasad, लव्स हैविंग बिग पावर। सबसे पहले के, नॉलेज। आत्मा का सबसे पहला जो गुण है वो है ज्ञान। हमें सभी को यहाँ ज्ञान मिला, ये ज्ञान कोई मनुष्य आत्मा यहाँ नहीं देती है, स्वयं निराकार परमात्मा यहाँ आकर ये ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान नया है, इसीलिए मैंने कहा YouTube चैनल पे जाना, सभी सेशंस को बार बार आप सुनना, कि सोल का, आत्मा का सेशन, परमात्मा का सेशन, तब हम उसको समझ पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज्ञान क्या मिला, मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। सभी हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम सभी कौन हो गए, भाई भाई हो गए, आत्मा आत्मा, शरीर से भाई बहन हो गए। तो किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे क्या, मेरे भाई बहनों के लिए मैं बुरा सोचूंगी क्या, कोई मेरे लिए कुछ भी सोच रहा है गलत। आज तो परमात्मा ने कहा कोई बददुआ भी दे रहा है तो भी वो आपका भाई बहन है, आपको क्या देना है, दुआएं दो, और क्या है, जो देते हैं वही रिटर्न में आता है। कभी ये सुना क्या, प्यार बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से कम होता है, प्यार बांटने से कम होता है, ऐसे सुना नहीं, प्यार बांटने से बढ़ता है, दुआएं देने से जो देंगे वही रिटर्न आता है, एक्शन वर्सेस अपोजिट रिएक्शन। तो मुझे क्या करना है, दुआएं देनी है। तो ये सारा हम जब ज्ञान सुनते हैं तो क्या हो जाता है, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा, यहाँ ये स्वच्छ बन जाता है, पवित्र बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। तो सेकेंड क्या गुण आता है, आत्मा में पवित्रता आती है। अभी सभी के लिए अच्छा सोच रहे तो नेचुरली हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अभी ये जो गुण आप सुन रहे हैं तो साथ में गुणों से फिजिकल बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 8 organ systems है। सबसे पहले ज्ञान किसको एनर्जाइज कर रहा है, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, मदर की भी और छोटू की भी, गर्भ में ही उसकी। जैसे आपने देखा सतीश भाई साहब, गुप्ता भाई साहब बता रहे थे कि क्यों ये हार्ट प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, अंदर ही उसको, हार्ट को कौन सी एनर्जी कम मिल रही है। तो सबसे पहले ज्ञान किसको एनर्जाइज करेगा, ब्रेन को एनर्जाइज करेगा। सेकेंड क्या है, प्यूरिटी किसको एनर्जाइज कर रहा है, मेरे सारे कर्मेंद्रियों को, कुछ भी गलत नहीं देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, खा रहे, सभी कर्मेंद्रिया प्योर बन गई। तीसरा क्या है, पीस, शांति किसको एनर्जाइज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स क्या करते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। कोविड में प्रॉब्लम्स किसने, लंग्स नहीं दिया था। चौथा वैल्यू क्या है, प्यार, प्यार किसको एनर्जाइज करता है, हमारे हार्ट को एनर्जाइज। जिनके जीवन में प्यार की कमी है उनको हार्ट प्रॉब्लम डेफिनेटली होंगे। तो इसीलिए लोगों को नहीं बोलना है आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझे प्यार दो, प्यार का सागर बैठा है उसके साथ कनेक्ट करना है, उससे प्यार से भरपूर होना है और यहाँ से देते जाना है। मैं देने वाली सतयुगी देवी देवता हूँ। पांचवा क्या है? के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर, हैविंग एच फॉर हैप्पीनेस। कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी किसको एनर्जाइज करेगी? हमारे पेट को एनर्जाइज करेगी। तो खुशी या सुख, सुख के बाद आता है आनंद, अतीन्द्रिय सुख। किसको एनर्जाइज कर रहा है? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को। तो हमारे सभी जितने भी हार्मोन्स है वो बैलेंस हो जाते हैं। और लास्ट है पावर। पावर से क्या होता है? मसल्स एंड बोन। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो मदर की भी, माना जो भी प्रैक्टिस करेगा, हरेक की क्या होगी? जो बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम परफेक्ट काम करती है। और इसीलिए हर एक को हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाना है, और विशेष गर्भवती माताओं को, क्योंकि बाय बर्थ बेबी का जो मन है और बेबी का जो शरीर है वो परफेक्ट डेवलप हो रहा है। और ये लास्ट संस्कारों की स्लाइड। तो जो हमने पांच संस्कार देखे, पांच बर्थ से लेकर आ रहे हैं, दीदी ने, शिवानी दीदी ने बहुत अच्छे से इसमें समझाया है, लेकिन मैं इसमें गर्भ संस्कार के रिलेटेड बताना चाहूंगी। तो हम पास्ट बर्थ के संस्कार चेंज नहीं कर सकते। जो हमें जेनेटिकली मिल रहे हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है कंपनी कलर, एनवायरमेंटल संस्कार। यदि हमारा एनवायरमेंट, संघ का रंग, संघ का संग यदि अच्छा होगा, परमात्मा का संग होगा, तो जैसा होगा संग वैसे चढ़ेगा रंग। चौथा फोल्डर क्या है? चौथे संस्कार वील पावर। जब मम्मा ये सुनती है, फैमिली मेंबर्स ये सुनते हैं, तब वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वील पावर से आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी खुशी को गायब नहीं करना है। यहाँ तक परमात्मा बताते हैं बच्चे शरीर भी छोड़ना पड़े लेकिन खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तो वील पावर से अभी क्या कर रहे हैं? जो फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा फोल्डर है, ओरिजिनल संस्कार, जो अभी हमने सेवन देखे, के पी प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर। या धीरे धीरे आपको याद भी हो जाता है, ज्ञान, प्यूरिटी, शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्ति। तो ये सेवन जो संस्कार जो है, ये एनर्जीज है, और वो एनर्जी हमारे शरीर को और हमारे मन को, हमारा मन शक्तिशाली बनता है, हैप्पी बनता है, हमारा मन शांत रहता है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपके जो एनवायरमेंटल संस्कार, व्हील पावर संस्कार से आप ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कर दे। तो यहाँ देखो, बेबी का, भले वो बच्चा लास्ट बर्थ से कुछ भी लेकर आया, जैसे दीदी ने एग्जांपल दिया, फ्लड्स हुआ, किसी ने शरीर छोड़ा, वो फियर लेकर गया, मम्मा को ये पता नहीं कि वो क्या संस्कार लेकर आया। लेकिन मम्मा यहाँ क्या कर सकती है? जब वो मेडिटेट करेगी, वो शक्ति से भरपूर होगी, तो जैसे ही शक्ति का प्रकाश आया, जो ये डर का अंधकार चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लाइट आ जाती है तो अंधकार चला जाता है। तो ये सारे हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, क्यों? क्योंकि शांति का प्रकाश नहीं है। तो क्या करना होगा? शांति के प्रकाश को बढ़ाना होगा। तो ये जो गुस्सा रूपी, अंगर रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे रोल आता है, लास्ट हो गया, तो यहाँ पे रोल आता है मेडिटेशन का। जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उस पावर हाउस से, वहां से ये सारी एनर्जीज आती है, मदर एम्पावर हो जाती है, मदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एम्पावर्ड होती है, तब जाकर हमारे बच्चे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड होंगे, श्री राधे श्री कृष्ण की तरह होंगे, और ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाएगी, और भारत जो है वो फिर से विश्व गुरु बन जाता है। आप सभी ने बहुत प्यार से सुना, आप सभी का मैं दिल से, तहे दिल से फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी। और आप ये प्रसाद सभी तक लेकर जाएंगे, ऐसी शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।